بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا، پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کار کے لیے تیار کر دیں گے، اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا۔ किंतु अत्यंत दुर्भाग्य वाला उससे कतराएगा वही जो बड़ी आग में गिर पड़ेगा, फिर वो उसमें न तो मरेगा न ही जिएगा। निश्चित रूप से जिसने अपने आप को पवित्र बना लिया वो सफल हो गया, और जिसने अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया फिर नमाज अदा की। नहीं बल्कि तुम तो सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो, जबकि परलोक अधिक उत्तम और शेष रहने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, ये सभा आप शॉर्ट वेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, बहमन की 16, जमादिस्सानी की 21 और फरवरी की 4 तारीख। प्रोग्राम में सदा की भांति पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पेश होगी, फिर आप सुनेंगे स्वतंत्रता प्रभात का खास प्रोग्राम, और सभा का अंतिम प्रोग्राम है आज की बात। हज़रत अली अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अपनी ज़बान की इस तरह रक्षा करो जिस तरह अपने सोने चांदी की रक्षा करते हो, क्योंकि कभी कभी मुंह से निकली हुई बात किसी नेमत के छिन जाने का कारण बनती है। आप फरमाते हैं कि हे आदम की संतान, आने वाले कल की चिंता न कर, क्योंकि अगर तेरे जीवन का एक दिन भी बाकी होगा तो तेरा पालनहार तेरी रोजी तुझ तक पहुँचाएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506542। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। باب محمد علی قمی اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران نے قانونی میدان میں امریکہ کو ایک اور پٹکنی دی۔ ایران اور بھارت نے رکشا سہیوگ بڑھانے پر بل دیا ہے۔ بھارت میں کسان آندولن کو انتراشٹریہ سمرتھن ملنے لگا ہے۔ سیریا میں پھر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ ہیگ کے انتراشٹری نیایالے میں امریکہ کے خلاف فیصلہ ایران کی ایک اور جیت ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے گروار کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ حالانکہ امریکیوں نے اس راجنیتک یدھ میں وبھن پرکار کے ہزاروں وشیشجوں سے مدد لی، لیکن ہم نے کچھ گنے چنے کوٹنیکوں کے ساتھ مورچہ سنبھالا اور جیت گئے۔ راشٹرپتی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی امریکی پرتبندھوں کے خلاف ایران کے مقدمے میں انتراشٹریہ ہیگ عدالت نے ہزاروں امریکی وکیلوں کی کوششوں کے باوجود ایران کے ہت میں فیصلہ دیا، اور کہا تھا کہ امریکہ کو مانوی کھیتروں کے سبھی پرتبندھوں کو ختم کرنا چاہیے، حالانکہ امریکیوں نے اس آدیش کا پالن نہ کر کے ایک اور اپرادھ کیا۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ اس چرن میں امریکیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عدالت ایران کی شکایت پر سنوائی ہی نہیں کر سکتی، لیکن بدھوار کو عدالت نے امریکہ کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور یہ ایران کی بہت بڑی قانونی جیت ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا راشٹر کتنا مہان ہے اور ہمارے شکشت یوا کوٹنیتی اور قانون کے شیتر میں بے حد سفل ہیں۔
ایران بھارت کے رکشا منتریوں کی ملاقات میں دوپکشی کھیتری و انتراشٹریہ سہیوگ میں وستار پر بل دیا گیا۔ اسلامی گنتنتر ایران کے رکشا منتری بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے نئی دلی میں اپنے بھارتیہ سمکش راجناتھ سنگھ سے ملاقات میں سامراج اور اتیاچار کے خلاف سنگرش کو دونوں دیشوں کی ایتیہاسک و سانسکرتک سامنتائیں گنوائیں۔ انہوں نے دونوں دیشوں کی ڈیفنس سیکیورٹی سہت وبھن آیام سے اپار سمبھاوناؤں کے استعمال کو آپسی سہیوگ میں وستار کے لیے ضروری بتایا، جسے دوپکشی کھیتری و انتراشٹریہ ہت سنشچت ہوں گے۔ اس ملاقات میں بھارتیہ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے بھی دونوں دیشوں کے ایتیہاسک سمبندھوں کا الیکھ کرتے ہوئے دونوں دیشوں کے بیچ رکشا کھیتر میں سہیوگ میں وستار پر بل دیا۔ इस्लामी गणतंत्र ईरान के रक्षा मंत्री मंगलवार को भारत के दौरे पर रवाना हुए। वो पहले बेंगलुरु गए, जहां उन्होंने एयर डिफेंस उद्योग की प्रदर्शनी का मुआयना किया और आज गुरुवार को नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष से मुलाकात की।
रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने भारत में हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में कहा कि अमरीका और ज़ायनी शासन को जब भी मौका मिलता है वो आतंकवाद को अपनी पैठ बनाने के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि पिछले दशक की कटु घटनाएं और बड़ी ताकतों की ओर से पेश किए गए मॉडल का नतीजा हिंसा, आतंकवाद, जनसंहार, सीमावर्ती मतभेद, जंग, अशांति और तबाही के सिवा कुछ और नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों का अंतर्राष्ट्रीय संधियों से एकतरफा तौर पर निकलना, सुरक्षा कायम करने वाले समझौतों से निकलना, उनसे समन्वित न होने के बहाने यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को कमजोर करना और ईरान तथा गुट 5-1 के बीच परमाणु समझौते से निकलना ऐसी मिसालें हैं जो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि बड़ी ताकतों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
भारत में जारी किसान आंदोलन को व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। किसान आंदोलन का सबसे पहले पॉप गायिका रियाना ने समर्थन किया। रियाना ने इंडिया कट्स इंटरनेट अराउंड न्यू एलडी एज प्रोटेस्टिंग फॉर्म्स क्लैश विद पुलिस शीर्षक से प्रकाशित सीएनएन के एक लेखक को शेयर कर किसान आंदोलन का समर्थन किया। रियाना ने ट्वीट कर के कहा कि हम किसानों के आंदोलन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रियाना के ट्वीट को कुछ ही घंटों में 1,00,000 से अधिक बार रीट्वीट किया गया और 2,00,000 से अधिक लोगों ने इसको लाइक किया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने भी सीएनएन का लेख शेयर किया और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं।
भारत की केंद्र सरकार ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वो किसानों के जनसंहार हैशटैग से संबंधित सामग्री या खातों को हटाने से संबंधी उसके निर्देशों का पालन करे और चेतावनी दी कि आदेश का अनुपालन न करने की सूरत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में ट्विटर को निर्देश दिया था कि वो ऐसे 250 ट्वीट या खातों को बंद करे जो 30 जनवरी को ऐसे गलत धमकाने वाले और भड़काने वाले ट्वीट्स साझा कर रहे थे जिनमें हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड लिखते हुए कहा गया था कि मोदी सरकार किसानों के जनसंहार की साजिश रच रही है।
भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून CAA के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि CAA को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी 2020 से ये अमल में आया है। राय ने बताया कि नियम बनाने के लिए लोकसभा समिति ने 9 अप्रैल और राज्यसभा समिति ने 9 जुलाई तक का समय दिया है। CAA के तहत नियम बनाने में 1 साल से अधिक की देरी हो चुकी है। इस कानून के दायरे से मुस्लिम समुदाय को बाहर रखने के चलते CAA के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए हैं।
सीरिया के संचार माध्यमों ने गुरुवार की सुबह दक्षिणी सीरिया और कुनैतरा पर इसराइली युद्धक विमानों के व्यापक हमले की सूचना दी। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना ने बताया कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली फाइटर जेट से फायर होने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए चालू हो गया। हलफ टुडे ने भी बताया कि दमिश्क के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इसराइली फाइटर जेट ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ इसराइली सूत्रों का कहना है कि यह हमला दक्षिणी सीरिया, दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गोलान हाइट्स के आसपास के क्षेत्रों में एक साथ किए गए।
अमरीकी आतंकवादी सेना के सेंट्रल कमांड का कहना है कि रियास के बारे में बाइडेन सरकार की नीतियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। आतंकवादी संगठन सेंटकॉम के कमांडर ने दावा किया है कि रियाज यमन युद्ध समाप्त करने में दिलचस्पी रखता है। उनका कहना था कि सऊदी अरब के बारे में अमरीका की नई सरकार के रवैये के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी संगठन सेंटकॉम के प्रमुख फ्रैंक मैक केंजी ने दावा किया है कि सऊदी सरकार यमन युद्ध का खात्मा चाहती है। उन्होंने डिफेंस वन नामक मैगजीन से बात करते हुए कहा कि मेरे कार्यक्षेत्र में सेना का सेना से संबंध है और हम राजनीतिक स्तर से हटकर उसकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। सेना का काम राजनीति की सेवा करना है, हम वही करेंगे जिसे राजनीति निर्धारित करती है।
व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने विलियम बर्न्स को CIA प्रमुख के रूप में मनोनीत करने के बाद सीनेट की पुष्टि के लिए भेज दिया है। فارس نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس نے بدھوار کو ایک بیان میں کہا کہ راشٹرپتی جو بائیڈن نے روس میں امریکہ کے پورو راجدوت ولیم برنز کو سی آئی اے کا مکھیا نیوکت کیا اور ان کی پشتی کے لیے سینٹ کو بھیج دیا۔
عراق کے عراق کے سرکشا ستروں کے انوسار دکشن عراق اور مدھ عراق میں آتنکوادی امریکی فوجیوں کے کارواں پر حملہ ہوا۔ سابرین نیوز کے انوسار سرکشا ستروں نے منگلوار کو بتایا کہ آتنکوادی امریکی فوجیوں کا ایک کارواں کیندری عراق کے بابل پرانت اور دوسرا دکشن عراق کے بصرہ پرانت میں نشانہ بنا۔ قاسم الجباری نامی پرتیرودھ گٹ نے بابل پرانت میں حملے کی ذمہ داری لی ہے، جبکہ بصرہ پرانت میں امریکی فوجی کارواں پر ہوئے حملے کے لیے اولیاء ادم پرتیرودھ گٹ نے ذمہ داری لی ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران عراق میں موجود امریکی فوجیوں کے لیے رصد لے جانے والے کارواں کے راستے میں بارمبار بم دھماکے ہوئے ہیں۔ غورطلب ہے کہ 5 جنوری 2020 کو عراقی سنسد میں اسے دیش سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کا پرستاؤ پارت ہونے کے بعد عراقی جنتا اور گٹ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی جلد سے جلد عراق سے نکل جائیں۔
اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو کا بحرین اور یو اے ای کا دورہ رد ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی پردھان منتری 3 دیوسی دورے پر بحرین اور یو اے ای کا دورہ کرنے والے تھے، جو بعد میں گھٹ کر 3 گھنٹے کا ہو گیا اور آخر میں پورا دورہ ہی رد کر دیا گیا۔ میڈیا سوتروں نے گروار کو رپورٹ دی کہ اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو نے بحرین اور سنیکت عرب امارات کا اپنا دورہ رد کر دیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ نیتن یاہو 9 فروری کو امارات اور بحرین اور یو اے ای کا 3 دیوسیہ دورہ کریں گے۔ اسرائیل کے ٹیلیویژن چینل 12 نے حال ہی میں رپورٹ دی تھی کہ یاترا 3 دن سے گھٹ کر 3 گھنٹے کی ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہو گئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 20 जमादी सानी को पैगम्बर इस्लाम की प्राण प्रिय सुपुत्री हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का शुभ जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर इस्लामी और गैर इस्लामी देशों में भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पावन बेला पर यमनी महिलाओं ने भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए और जश्न मनाए۔ श्रोताओ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ईरान के प्रतिरक्षा मंत्री ब्रिगेडियर अमीर हातमी आजकल भारत के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ बैठक की, जिसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत रचनात्मक और लाभदायक बताया। इस बैठक के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष को मीनाकारी किया हुआ एक सुंदर व कीमती पात्र भेंट किया। भारत में 71 दिनों से किसानों का आंदोलन यथावत जारी है। किसान 3 विवादित कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने जहां रास्तों को बंद करने के काफी रुकावटें खड़ी कर दी हैं, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर पूरे उत्साह के साथ डटे हुए हैं।
तो क्या सरकार कहती है, बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है?
ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 20 जमात इस्लामी को पैगम्बर इस्लाम की प्राण प्रिय सुपुत्री हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का शुभ जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर इस्लामी और गैर इस्लामी देशों में भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पावन बेला पर यमनी महिलाओं ने भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए और जश्न मनाए। यमनी महिलाओं का कहना है कि इस्लाम धर्म में हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आदर्श हैं, इस प्रकार से कि वो समस्त सदगुणों की प्रतिमूर्ति हैं। पेश है सुल्तान सदा की रिपोर्ट।
بمناسبه اليوم العالمي للمراه
انترراستيه مسلمان مهلا دیوس اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سپوتری حضرت فاطمہ زہرا کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر یمنی مہیلاؤں نے وبھن کاریکرموں کا آیوجن کیا۔
آج کا دن سانسکرتک درشٹی سے بہت مہتوپورن ہے اور ہم اچھ مولیوں کو اس مہان ہستی سے سیکھیں جن کا انوسرن ایشور ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام دھرم میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مہیلاؤں کے لیے سروتم آدرش ہیں، اس پرکار سے کہ وہ سمست سدگنوں کی پرتیمورتی ہیں۔
فی ظل الحروب الثقیلہ
مسلمان مہیلاؤں کے خلاف دشمنوں کے سانسکرتک حملوں کے درشٹیگت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوری دنیا کی مسلمان مہیلاؤں کے لیے مارگ درشک اور شریشٹم آدرش ہیں۔ ایسے شبھ دن کو یمنی مہیلائیں پاٹھ لینے کے دیوس کے روپ میں منا رہی ہیں۔
ہم دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وبھن کالوں میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی انوسرن کرتا پیڑھی کی پرشکشا کر رہے ہیں۔ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو اتکرمن کاریوں و بھرشٹاچاریوں کے مقابلے میں پرتیرودھ کرنے والی پوتر مہیلائیں بھی نہ ہوتی۔
اسلام سروتم دھرم ہے جس نے مہیلا کو سمان دیا اور سماج میں اس کے استھان کو سرکشت رکھا، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ مہان ہستی تھیں جو ایشوریہ شکشاؤں اور مولیوں کا جلوہ تھیں۔ یہی کارن ہے کہ آج پوری دنیا اس دن کو عید کے روپ میں منا رہی ہے۔ اس دن کا مہتو اس لیے ہے کہ اسی دن ارتھات 20 جماعت الثانی کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا شبھ جنم دیوس ہے، اور یمنی سرکار اور لوگ آج کے دن اس پرکار جشن مناتے ہیں۔ سنا سے آئی آر آئی بی کے لیے سلطان صدا کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ईरान के प्रतिरक्षा मंत्री ब्रिगेडियर अमीर हातमी आजकल भारत के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ भेंट की, जिसे भारत के रक्षा मंत्री ने बहुत रचनात्मक और लाभप्रद बताया। इस बैठक के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष को मीनाकारी किया हुआ एक सुंदर व कीमती पात्र भेंट किया, और भारत के रक्षा मंत्री ने भी अपने ईरानी समकक्ष को कश्मीरी साल उपहार स्वरूप भेंट की। अब्दुल मलिकी की रिपोर्ट पेश करें साथ ही अख्तर अब्बास।
बुधवार को ईरान के रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने सबसे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत से भेंट की, और इस भेंट में उन्होंने दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानताओं और इसी प्रकार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मामलों में समान दृष्टिकोणों की ओर संकेत किया और रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की मांग की। जनरल विपिन रावत ने भारत के हवाई रक्षा उद्योग की प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में ईरानी रक्षा मंत्री की उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त किया और उसे दोनों देशों के संबंधों में विस्तार का सूचक बताया। ब्रिगेडियर अमीर हातमी ने इसी प्रकार अपने भारतीय समकक्ष से मुलाकात की। اس بیٹھک میں دونوں دیشوں کے رکشا منتریوں نے افغانستان میں شانتی و سرکشا کی استھاپنا کے لیے سہیوگ کیے جانے پر بل دیا۔ اسی پرکار اس بیٹھک میں چابہار بندرگاہ کے وستار میں سہیوگ، رکشا سہیوگ میں وردھی، سمندری کھیتر میں سوچناؤں کے آدان پردان اور اسی پرکار کورونا سے مقابلے پر بل دیا گیا۔ بھارت کے رکشا منتری نے اس بیٹھک کی سماپتی پر اسے بہت رچناتمک اور لابھدائک بتایا۔ اس بیٹھک کے بعد ایران کے رکشا منتری نے اپنے بھارتیہ سمکش کو مینا کاری کا ایک سندر تحفہ پیش کیا اور بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے بھی اپنے ایرانی سمکش بریگیڈیئر امیر حاتمی کو کشمیری شال اپہار میں بھیٹ کی۔ ایران کے رکشا منتری اور ان کے ساتھ بھارت کی یاترا پر جانے والے پرتندھی منڈل نے اس بھیٹ سے پہلے بھارت کے ہوائی رکشا ادیوگ کی پردرشنی کا نرکشن کیا۔ یہ پردرشنی ہوائی رکشا کھیتر میں بھارت کے سمست پریاسوں کا نمونہ ہے۔ بنگلورو سے آئی آر آئی بی کے لیے سمواددتا حسن عبد الملکی کی رپورٹ۔
بھارت میں 71 دنوں سے کسانوں کا آندولن جاری ہے۔ کسان 3 وواعدت کرشی قانونوں کو رد کیے جانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ بھارت سرکار نے جہاں راستوں کو بند کرنے کے لیے کافی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، وہیں کسان اپنی مانگوں کو لے کر پورے اتساہ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کسانوں نے بھارت سرکار کو سچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے 3 کرشی قانونوں کو سماپت نہیں کیا تو پھر سے ٹریکٹر ریلی نکالی جائے گی، جس میں پورے دیش سے لاکھوں کسان ٹریکٹر کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بھارتیہ کسان یونین کے پروکتا راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ یہ آندولن اکتوبر تک چلنے والا ہے اور ہم گاؤں گاؤں میں پنچایت کریں گے۔ دلی سے شمشاد کاظمی۔
بھارت کی راجدھانی دلی کی سیماؤں پر نئے کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کا ورودھ پردرشن جاری ہے اور کسانوں کے دھرنے کا آج 71واں دن ہے۔ دلی کی سیماؤں پر کڑی سرکشا ویوستھا اور راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے بیچ کسان اپنی مانگوں کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کسانوں نے کہا ہے کہ یدی کیندر سرکار 3 کرشی قانونوں کو رد نہیں کرتی ہے تو پھر سے ٹریکٹر ریلی نکالی جائے گی، جس میں دیش بھر کے لاکھوں کسان ٹریکٹر کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بھارتی کسان یونین کے پروکتا راکیش ٹکیت نے کہا کہ یہ آندولن اکتوبر تک چلنے والا ہے اور ہم گاؤں گاؤں میں پنچایت کریں گے۔
ہمارا ادیش یہ ہے کہ گاؤں کو اکٹھا کریں گے، گاؤں میں جائیں گے اور یہ پنچایت پورے دیش بھر میں اس طرح کی پنچایتیں سب جگہ۔
کسان آندولن کو لے کر دیش میں راجنیتی بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وپکشی دل نرنتر کرشی قانونوں کا ورودھ کر رہے ہیں اور اسی سندربھ میں آج وپکشی دلوں کے سانسدوں کا ایک پرتندھی منڈل کسانوں کے سمرتھن کے لیے غازی پور بارڈر کی اور روانہ ہوا، لیکن پولیس نے اس پرتندھی منڈل کو غازی پور بارڈر جانے سے روک دیا۔ پولیس دوارا روکے جانے پر سانسدوں نے کہا کہ ہم اس کا ورودھ کرتے ہیں۔ اس پرتندھی منڈل میں ٹی ایم سی، ڈی ایم کے، این سی پی اور اکالی دل سہیت 10 وپکشی دلوں کے 15 سانسد شامل تھے۔ بھاجپا کی پورو سہیوگی شرومنی اکالی دل کی نیتا ہرسمرت کور نے کہا کہ اس مدے کو سنسد میں اٹھایا جائے گا۔ ہرسمرت کور نے کہا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، کسانوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔
ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کے ناطے ہم کو اتنا یہ دیکھ کے بھیانک ڈر لگ رہا ہے، تو جو وہ بیچارے اندر بنا پانی کے، بنا بجلی کے، بنا کھانے کے، بنا ٹوائلٹس کے 3 کلومیٹر تک ایسے بیریکیڈنگ ہے، 3 کلومیٹر جو ان کو اندر دونوں طرف سے اس طرح بند کیا ہوا ہے، ان بیچاروں کے کیا حال۔
بتایا جاتا ہے کہ تار بندی اور بیریکیڈنگ کے ساتھ لگی نکیلی کیلوں کے کارن وپکش کے سانسد دلی سیما سے یو پی گیٹ تک نہیں پہنچ سکے۔ اس دوران دلی پولیس کے لگاتار چھوی بگڑنے سے ورشٹھ ادھیکاریوں نے نکیلی کیلوں کو ہٹانے کا نرنے لیا ہے۔ ادھر دلی کی سیماؤں پر 2 مہینے سے ادھک سمے سے پردرشن کر رہے کسان اپنا آندولن تیز کرنے کی رڑنیتی تیار کر رہے ہیں۔ اسی سندربھ میں کل ہریانہ کے جند ضلع کے کنڈیلا گاؤں میں کسان مہا پنچایت ہوئی، جس میں بڑی سنکھیا میں کسانوں نے بھاگ لیا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروتاؤ, ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا آج کی بات, پر اس سے پہلے سواتنترتا پربھات کے اوسر پر آپ سنیے ہمارا وشیش کاریکرم.
سوتنترتا پربھات.
दोस्तों, विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए.
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम शीत युद्ध के दौरान और पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में दुनिया के विभाजन के दौरान ईरान की राष्ट्रीय स्वाधीनता से संबंधित नारे के बारे में बात करेंगे. इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद यह नारा ईरान की विदेश नीति का आधार बना और विश्व स्तर पर इसने ईरान की स्वाधीनता के लिए भूमि प्रशस्त की. नारा था ना शर्की ना गर्बी, जमहूरी इस्लामी, यानी न पूरब न पश्चिम बल्कि इस्लामी गणतंत्र. आज के कार्यक्रम में हम इसी नारे के बारे में बात करेंगे कि ईरान और विश्व के विचारकों और स्वतंत्रतावादियों के दिमाग में इस नारे की उत्पत्ति क्या थी और किस तरह से ये इस्लामिक क्रांति में ईरानी जनता की एक मुख्य मांग बन गया.
लगभग 500 साल पहले सफवी शासन काल के दौरान जब शासन और राष्ट्र ने ईरान में नया रूप लिया तो धीरे धीरे ईरान विश्व शक्तियों के ध्यान का केंद्र बनता गया. उस समय ईरान का रणनीतिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार, ईरान की विदेश नीति के पड़ोसियों के साथ शांति और युद्ध के दायरे से बाहर जाने और ईरान की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बीच एक तरह की कड़ी स्थापित करने का कारण बना. लगभग 200 साल पहले काजारी शासनकाल में इन संबंधों का अधिक विस्तार हुआ. उस समय दो शक्तियों रूस और ब्रिटेन में ईरान में प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी. ईरान की कमजोर सरकार इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती थी और दोनों ही देशों को कुछ विशिष्टताएं प्रदान करके खुश रखने का प्रयास किया करती थी ताकि खुद को सुरक्षित रख सके.
विदेशी शक्तियों विशेषकर रूस और ब्रिटेन की सरकारों का ईरान में इतना अधिक प्रभाव और हस्तक्षेप था कि संवैधानिक क्रांति के दौरान लोगों की एक मुख्य मांग विदेशी शक्तियों से मुकाबला करना था. उस काल में ईरानी सरकार द्वारा निष्पक्ष नीति अपनाने के बावजूद ये देश विश्व युद्ध में शामिल देशों के हस्तक्षेप के कारण युद्ध की चपेट में आ गया, जिसके नतीजे में अकाल, महामारी और आर्थिक तथा राजनीतिक संकट में फंस गया.
दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय व्यवस्था के उत्पन्न होने तथा शीत युद्ध नामक नई प्रणाली के वजूद में आने से दुनिया के करीब सभी देश दो ब्लॉकों पूर्व व पश्चिम में शामिल होने के लिए मजबूर थे. लेकिन कुछ अफ्रीकी और एशियाई देशों ने दोनों ब्लॉकों और अमेरिका एवं सोवियत संघ से स्वाधीन रहने का फैसला किया. उन्होंने स्वाधीन विदेश नीति का चयन किया. इसी उद्देश्य से सन 1955 में गुटनिरपेक्ष अफ्रीकी और एशियाई देशों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था. सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों में ईरान की कानूनी सरकार के नेता डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक भी शामिल थे.
ईरान में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कारण ब्रिटेन उनसे नाराज था, जिसके बाद यूएस ब्रिटिश संयुक्त तख्तापलट के कारण उन्हें सत्ता से अलग कर दिया गया. सितंबर 1961 में बेलग्रेड में एक अन्य सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की संतुलन नीति को अपनाया, जिसे उन्होंने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण और ब्रिटेन से संघर्ष के दौरान लागू किया था. संतुलन की नीति के जरिए ईरानी प्रधानमंत्री ने ईरान में शक्तिशाली देशों के हस्तक्षेप को रोक दिया था और दो ध्रुवीय दुनिया में निष्पक्ष रहने का एक व्यवहारिक मॉडल पेश किया था.
نہ پوروی اور نہ ہی پشچمی نعرے کے روپ میں ایران کی اسلامی کرانتی میں جو کچھ پیش ہوا قرآنی اور دھارمک شکشاؤں کے علاوہ اور کسی کے ورچسو کو سویکار نہ کرنے پر بل ایتہاسک اور راجنیتک روپ سے اس کی جڑیں نکاراتمک سنتولن کی نیتی میں نہت تھیں۔ تیل ادیوگ کے راشٹریہ کرن کے دوران اسے پیش کیا گیا تھا اور بعد میں گٹ نرپیکش آندولن کے سدسیہ دیشوں کے لیے یہ آدرش بن گئی۔ نکاراتمک سنتولن کی نیتی کا مطلب تھا ودیشی شکتیوں کے ہستکشیپ سے دیش کی سوتنترتا۔ ودیشی شکتیوں میں ہر وہ شکتی شامل ہے جو سماج کے راجنیتک، آرتھک اور سانسکرتک وکاس کے مارگ میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتی ہے۔
ईरानी राष्ट्र का मानना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता और विदेशियों का देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना सभी देशों का एक स्वाभाविक अधिकार है। ईरान में रूसी और ब्रिटिश हस्तक्षेप के अप्रिय ऐतिहासिक अनुभवों के मद्देनज़र ईरानी राष्ट्र किसी भी कीमत पर इस अधिकार से पीछे हटने को तैयार नहीं था। संतुलन की नीति सभी विदेशी शक्तियों को एक नज़र से देखती थी और उसने पूर्व पर निर्भरता की कीमत पर पश्चिम से मुक्ति के सिद्धांत को दृढ़ता से खारिज कर दिया था। ये उस नीति के समान थी जिसे पहले मिर्ज़ा तकी खान आमिर कबीर की अध्यक्षता में थोड़े से समय के लिए तीसरी ऊर्जा के रूप में ईरानी सरकार ने अपनाया था। इस अंतर के साथ कि संतुलन की नीति में तीसरी ऊर्जा पर भी कोई निर्भरता नहीं थी, बल्कि इस नीति का सहारा और भरोसा लोगों की जागरूकता और उनका समर्थन था।
तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संघर्ष में ईरान की वैध सरकार की नकारात्मक संतुलन की नीति विश्व के कई पीड़ित देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने और पूर्व और पश्चिम के ब्लॉकों में स्वाधीनता की नीति अपनाने का एक मॉडल बन गई। लेकिन सन 1953 में अमरीकी ब्रिटिश तख्ता पलट के साथ ईरान के तानाशाह नरेश ने संतुलन और गुट निरपेक्षों को छोड़कर पश्चिम विशेष रूप से अमेरिका के साथ जुड़ने की नीति अपनाई। शाह का मानना था कि उसका ताज और तख्त अमेरिकियों के भरोसे है, इसीलिए उसने पश्चिमी ब्लॉक को अत्यधिक आर्थिक व रणनीतिक विशिष्टताएं दी थीं। इस देश के साथ सैन्य व सुरक्षा समझौतों के कारण शाह अमेरिका और पश्चिम की कठपुतली बनकर रह गया था।
अमेरिका के समर्थन और तेल राजस्व और अमेरिका से खरीदे गए आधुनिक सैन्य और सुरक्षा उपकरणों पर भरोसा करते हुए शाह ने देश में घुटन भरा माहौल उत्पन्न कर दिया था। मोहम्मद रजा शाह की तानाशाही सरकार ने देश की स्वतंत्रता को नष्ट करने और उसे पश्चिमी सरकारों विशेष रूप से अमेरिका पर निर्भर करने के अलावा लोगों की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को भी नष्ट कर दिया और संवैधानिक सरकार को एक पूर्ण राजतंत्र और तानाशाही में बदल दिया जिसने सभी विरोधियों का दमन किया और किसी भी तरह की आलोचना या विरोध की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
इन परिस्थितियों में स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरानी राष्ट्र की स्वाधीनता और आज़ादी की प्राप्ति के लिए इस्लामी क्रांति हुई। स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने न पूर्वी और न ही पश्चिमी का नारा देकर स्वाधीनता को इस्लामी क्रांति के मुख्य उद्देश्य में बदल दिया और उसे इस्लामी गणतंत्र की विदेश नीति का शीर्षक बना दिया। क्रांति की सफलता के एक महीने से भी कम समय बाद डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दक की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आयतुल्ला सैयद महमूद तालिकानी ने उल्लेख किया था कि डॉक्टर मुसद्दक ने एक दक्ष चिकित्सक की तरह अपनी उंगली को दर्द की जगह रखा और कहा कि हमें पूर्वी और पश्चिमी जगत में निष्पक्ष रहने की ज़रूरत है। इस तरह से उन्होंने गुट निरपेक्षता का बीज बो दिया। इसी विचार का आगे चलकर जमाल अब्दुल नासिर, नेहरू और सोकार्नो ने अनुसरण किया।
इमाम खुमैनी द्वारा इस नीति की व्याख्या आगे चलकर ईरान की विदेश नीति का सिद्धांत बन गई। ईरान के संविधान के आर्टिकल 152 में किसी भी प्रकार के वर्चस्व को नकार दिया गया है और राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता, अखंडता और सभी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया गया है। इसी तरह से गैर दुश्मन सरकारों के साथ शांतिपूर्ण पारस्परिक संबंधों को ईरान की विदेश नीति का आधार माना गया है। न पूर्वी और न ही पश्चिमी नारा ईरानी विदेश मंत्रालय की इमारत के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्वाधीनता और पूर्वी व पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहने की निशानी है, न कि अन्य देशों के साथ सार्थक संबंध और पारस्परिक सम्मान का इनकार करना है। दूसरे शब्दों में इस नारे का उद्देश्य देशों, विशेष रूप से पूरब और पश्चिम के देशों के वर्चस्व को नकार देना है, न कि सार्थक और सम्मानजनक संबंधों से इनकार। इसका मतलब है कि न पूर्वी और न पश्चिमी का नारा विदेशियों के वर्चस्व से इनकार है, न कि दुनिया के देशों से संबंधों के विस्तार से इनकार।
इसी आधार पर इस्लामी गणतंत्र ने हमेशा ये प्रयास किया है कि पश्चिम और पूरब से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करते हुए दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई के नेतृत्व में भी ये नीति जारी है। उनके नेतृत्व के 30 वर्षों के दौरान विदेश नीति का आधार भी यही है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि ईरान की विदेश नीति की बुनियाद न पूर्वी और न ही पश्चिमी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कभी बदलाव नहीं होगा। इस सिद्धांत का मतलब है अहंकार के मुकाबले में डट जाना और इस्लामी समुदाय के हितों की चोरी को गंभीरता से रोकना। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रवीश जैदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम का विषय है भारत में जारी किसान आंदोलन और उसे खत्म कराने के मोदी सरकार के प्रयास। आशा करते हैं हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर 3 विवादित बिल संसद में पारित करवाए, जिसका देश के किसान संगठन और विपक्ष पहले से ही विरोध कर रहे थे। बिलों के पारित होने से नाराज पंजाब और हरियाणा के किसान कई जगहों पर धरने पर बैठ गए। विवादित तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान संगठनों ने अपने विरोध को तेज करने का फैसला किया और 25 नवंबर 2020 को उन्होंने अपना धरना स्थल दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली की चारों सीमाओं गाजीपुर सिंघू टिकरी और शाहजहांपुर पर स्थानांतरित कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकारों ने शुरुआत में ही किसानों को दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन किसानों के मजबूत इरादों के सामने उनकी एक न चली। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के सामने पेशकश रखी कि अगर वे अपना धरना स्थल दिल्ली की सीमाओं के बजाय किसी एक स्टेडियम में स्थानांतरित करते हैं तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है।
नेशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट होने के लिए शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी, आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं।
लेकिन किसानों ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमित शाह जिसको पार्क या स्टेडियम बता रहे हैं वास्तव में वो ओपन जेल है। उन्होंने कहा,
जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है।
उसके बाद सितंबर की शुरुआत से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 22 जनवरी को 11वें राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। यहां तक कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने के दौरान हिंसा और लाल किले पर खालसा झंडा फहराने की घटना घटी, जिसके बाद मोदी सरकार और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक आवाज होकर इस हिंसा के लिए किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। सिखों और किसानों के खिलाफ जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई और किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करके उन पर भरपूर दबाव बनाया गया। भारत की प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल साइट द वायर के एक वरिष्ठ राजनीतिक संपादक अजय आशीर्वाद ने बताया कि वो और उनके कई साथी 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को कवर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो पुलिस प्रशासन ने किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए रूट दिया था उस पर बैरिकेडिंग किए हुए थे। अजय आशीर्वाद ने बताया,
करीबन 4 से ज़्यादा रिपोर्टर अलग अलग रैलीज में को कवर कर रहे थे। मैं टीकरी बॉर्डर से जो निकली हुई जो रैली है वो कवर कर रहा था और वहाँ के जो पूरे जो वो मेरे पास रूट मैप था और वहाँ पर अलग अलग जगहों में मैं गया और वहाँ पर मैंने यही देखा कि कई सारी जगह ऐसी थी, जैसे कि एक छावला बस स्टैंड हुआ, एक नांगली डेयरी बस स्टैंड हुआ, ये जो रूट मैप के जो पार्ट थे वहाँ पर भी बैरिकेटिंग करके रखी गई थी। मैंने पुलिस वालों से जानने की ये कोशिश की कि क्यों ये जो रूट मैप है यहाँ पर भी बैरिकेटिंग की गई है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था क्योंकि ज़्यादातर जो जूनियर लेवल पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उन बैरियर्स को मैन कर रहे थे वहाँ पर और उनका कहना था कि उनके पास जो ऑर्डर्स है वो उनको वो फॉलो कर रहे हैं और लगातार मैंने देखा वहाँ पर बैठकर कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स दिल्ली पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और मीडिया वाले लगातार वहाँ पर इस रूट पे ट्रैक्टर रैलीज का इंतज़ार कर रहे थे और करीबन दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच ट्रैक्टर्स जब आना शुरू हुए तो वो हमें पता चला कि वो अलग अलग तरफ बिखर के रह गई है और कोई एक रूट फॉलो नहीं कर रही है। जब किसानों से मैंने ये पूछा कि उन्होंने क्यों रूट फॉलो नहीं किया तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारा प्री अप्रूव्ड रूट था वहाँ पर कई जगहों में पुलिस ने बैरियर्स लगा के रखे थे और उससे एक अफरा तफरी का माहौल मच गया।
उसके अगले ही दिन दिल्ली की चारों सीमाओं पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई और किसानों को धरना स्थल खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब ये आंदोलन दम तोड़ने वाला है और सरकार लाल किले की घटना का सहारा लेकर किसानों को दिल्ली की सीमाओं से खदेड़ देगी। हालांकि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में सिख किसान डटे हुए थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या को कम देखकर सरकार और पुलिस प्रशासन काफी उम्मीदवार हो गए थे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की किसानों से भावुक अपील ने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी और एक बार फिर बाजी पूरी तरह से किसानों के हक में पलट दी। राकेश टिकैत ने रोते हुए कहा कि वो इस आंदोलन को खत्म होने नहीं देंगे।
अब क्या अभी जारी रहेंगे,
गोली के सामने भी जाएंगे, आंदोलन को खत्म कर देंगे, साथ ही बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा।
आप रो क्यों रहे?
आंदोलन खत्म नहीं होगा, पूरे देश के किसान, अब पूरे देश के किसान बर्बाद कर देंगे।
अब क्या अभी जारी रहेंगे,
गोली के सामने भी जाएंगे, आंदोलन को खत्म कर देंगे, साथ ही बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा।
यहाँ हम इस बात का जायजा लेंगे कि किसान आंदोलन को नाकाम बनाने के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए जो अब तक बेनतीजा रहे हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों का दमन किया और पुलिस को उन पर लाठी डंडे बजाने के लिए खुली छूट दे दी, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारी किसान डटे रहे और टस से मस नहीं हुए। अपनी ये चाल नाकाम होते देख सरकार ने किसान नेताओं में फूट डालने की कोशिश की और इसके लिए मीडिया का भरपूर सहारा लिया, जो पहले से ही सरकार का तोता बना हुआ है। अपनी ये दोनों टैक्टिक्स फेल होते ही देख मोदी के चाड़ा की कहे जाने वाले अमित शाह ने बातचीत और अदालत का सहारा लिया। बातचीत के दौरान ही किसान नेताओं को डराने और धमकाने के लिए तरह तरह की चालें चली गईं। जांच एजेंसियों को किसान नेताओं के पीछे लगाया गया, बातचीत को जानबूझकर तूल दिया गया ताकि आंदोलनकारी किसान थक जाएं और अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन किसान सरकार की इस मंशा से अच्छी तरह वाकिफ थे और वे शुरू से ही ऐलान कर रहे थे कि हमें अगर वर्षों भी धरने पर बैठना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान किसान नेताओं को खरीदने और उन्हें बड़ी बड़ी पेशकश की खबरें आती रहीं, लेकिन जब सरकार की एक एक करके सभी चालें नाकाम हो गईं तो 26 जनवरी को अपने कुछ गुर्गों के जरिए खालसा झंडा फहराकर और दिल्ली की सड़कों पर हिंसा को हवा देकर राष्ट्र की भावनाएं भड़काने की पूरी कोशिश की गई, जो इस आंदोलन के खिलाफ मोदी सरकार की अभी तक की सबसे बड़ी चाल थी। किसान नेताओं ने खुद को इस हिंसा से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार और मीडिया ने जो नैरेटिव पेश किया धीरे धीरे वो लोगों के दिमाग में बैठने लगा। यहाँ तक कि ये प्रोपेगंडा किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब में बह गया। द वायर न्यूज की संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद किसान आंदोलन में आई तेजी के बारे में बताते हुए कहा,
हमने देखा गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली बंद की गई और पानी बंद किया गया। एक देसी जबान में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना, किसानों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। लेकिन एक तरह से जैसे ही जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने जो जज्बाती भाषण दिया और कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग किसानों को मारना चाहते हैं, उनके इस भाषण से पूरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी एक तरह से चूल्हे हिल गई, जैसे कहते हैं दरो दीवार हिल गए। वहां पर हजारों की तादाद में किसानों का आना शुरू हो गया और मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, इन तमाम जगहों से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स لے کر لوگ وہاں پر گاڑیاں لے کر لوگ کسان آ گئے اور کس طرح سے وہاں پر کسان پنچایتیں ہوئیں. اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ تمام جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھلا کر سب سے پہلے جسے پگڑی بچانا کہا جاتا ہے, پگڑی بچانے کے لیے وہ لوگ وہاں آ گئے. کیونکہ ایک طرح سے یہ سوال پورا کسانوں کا سوال ہو گیا, یہ سوال ہو گیا کسان بنام سرکار.
विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर है और इसके बाद ये आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा उससे मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के समर्थन में भारी कमी आएगी. खासतौर पर पंजाब के बाद अब ये आंदोलन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है. हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की एक बड़ी संख्या है और इस समुदाय ने पिछले दो आम चुनावों और यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट किया था. अब यही जाट समुदाय जो मूल रूप से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसके नेता सार्वजनिक मंच से अपनी भूल में सुधार का ऐलान कर रहे हैं. किसान आंदोलन के इस नए मोड़ से इस आंदोलन को इसलिए भी मजबूती मिली है कि अब इसमें आगे आगे सिर्फ सिख समुदाय नहीं है जिसे हिंदुत्ववादी लगातार निशाना बनाने और देशद्रोही साबित करने का प्रयास कर रहे थे. इसलिए इस आंदोलन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव को देखकर ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अब इस आंदोलन का एक एक दिन बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा और इसका सियासी खामियाजा उसे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है. यानी वही चाल जो बीजेपी सरकार किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए चल रही थी अब वही चाल उलट गई है और इसका लंबा खींचना किसानों और विपक्ष के हक में है और सरकार के लिए नुकसानदेह होगा. दोस्तों कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें, खुदा हाफिज.
अंत में मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर पेश है. ईरान ने कानूनी मैदान में अमेरिका की और पटखनी दी. ईरान और भारत ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है. भारत में किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने लगा है और सीरिया में इसराइल ने फिर हमला किया. आशा है सभा के प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे. प्रोग्राम के बारे में आप अपने विचार हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, hindi@ws.irib.ir. व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098-9035-06-5492. और इसी के साथ यह सभा समाप्त होती है. मोहम्मद अली कुम्मी और साथियों को इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, खुदा हाफिज.
हूँ।